ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀ ವಾಸದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತ ಗದಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಂದ ರಾಧಾ ಕುಂದ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧಂತಿ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕೀ ನವದ್ವೀಪ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ್ ಕೀ ಗಂಗಮಯಿ ಕೀ ಜಮುನಮಯಿ ಕೀ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕೀ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋಕುಲಾನಂದ ಜೀ ಕೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರಮಾಯಿ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ ಕೀ ಜಯ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ ಜಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀ ಜಯ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ
ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರಭು ಆಯ ಆಜ ಕಥಾ ಕರೆಂಗೇ ಆಜ ಸುಬಹಿ ಬಹುತ ಹಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಪಾಠ ಉನ್ನೇ ಅನೇಕ ಭಕ್ತ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರಭು ಪಹಚಾನೇ ಪರಂತು ಉನ್ ಭಕ್ತೀ ಶಾಯದ ನೀ ಪಹಚಾನೆ ಹೋ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಕರಾನಾ ವೈಸೆ ಪಿಛಲೆ 26-27 ವರ್ಷೋ ಹಮಾರೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಜುಡೆ ಹುಏ ಹೇ ಬಹುತ ಹಾರ್ದಿಕ ರೂಪ ಜಬ ಯೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಢಾಯಿ ಕಿಯಾ ಕರತೆ ಥೇ ತಬ್ ಸೇ ವೋ ಸಂಸ್ಥಾ ಜುಡೆ ಹುಏ ಹೇ ವೈಸೆ ಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇ ಔರ್ ಜಬ್ ಅಪ್ನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇ ಪಢಾ ಕರತೆ ಥೇ ತೋ ಇನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅನೇಕ ಔರ್ ಭೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಬನ್ ಗೇ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಜುಡ ಗೇ ಔರ್ ತಬ್ ಸೇ ಉನ್ಹೊನೇ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಕಾ ಆಚರಣ ಕರ್ನಾ ಔರ್ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ನಾ ಶುರೂ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ ದಿನ ಸೇ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೇ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮೇ ಪ್ರಚಾರ ಮೇ ಸೇವಾ ಮೇ ಕೋಯ್ ಘಟನ್ ನಹೀ ಹುಯಿ ಹೈ ಜೈಸೆ ಪಹಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಸ್ ಸಮಯ ಉತ್ಸಾಹ ಥಾ ಆಜ ಭೀ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ಆಕರ್ ದಿನ ಭರ ಸೇವಾ ಮೇ ವ್ಯಸ್ತ ರಹೇ ಜೋ ವೇ ಕಥಾ ಕೀ ಫಿರ್ ಔರ್ ಕಹೀಂ ಗಏ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇ ಲಿಯೇ ಅಬ್ ಫಿರ್ ಸೇ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಹೀ ಹೈ ತೋ ಹಮ ಸಬ್ಕೋ ಏಕ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಇತನಾ ಉತ್ಸಾಹ ರಖತೇ ಹೈ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಕಾ ದೇಖಭಾಲ್ ಕರತೇ ಹೈ ಜೈಸೆ ಹಮ ಸುಬಹ ಕಹ ರಹೇ ಥೇ ಉನ್ಕಾ ಜೀವನ ಏಕ ಶರಣಾಗತಿ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಹಮ ಸಬ್ಕೇ ಲಿಯೇ ಹೈ ಜಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹುಏ ಥೋಡೆ ಸಮಯ ಬಾದ್ ಉನ್ಕಾ ವಿವಾಹ ಹುಆ ಔರ್ ಫಿರ್ ಆದೇಶ ಉನ್ಕೋ ಮಿಲಾ ಕಿ ಚಲೋ ಅಭಿ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶರಣಾಗತ ಹೋ ಜಾಓ तो उस समय उनका छोटा भी बच्चा हुआ था तो साथ में लेकर ऋषिकेश चले गए। ये सोचा नहीं आगे कैसे होगा क्या होगा कैसे परिवार चलेगा, परिवार के साथ में वहां रहे कई वर्ष वहां रहे फिर वापस आए मंदिर दादा गोपीनाथ मंदिर में भी थोड़े समय के लिए रहे फिर वृंदावन में जाने का आदेश मिला तो वहां चले गए फिर आके भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में सेवा करने का आदेश हुआ वहां के लिए तैयार हो गए। इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे बड़े उत्साह से शुद्धता से हृदय पूर्वक सेवा की जा सकती है। एक डॉक्टर होके भी वो अपने जीवनी से हम सबको दिखा रहे हैं और खास करके हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमसे बहुत निकट रहे हैं पिछले 25 से अधिक वर्षों से, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आज हम सबके बीच में आके भगवद गीता श्रीमद भागवत के ऊपर कुछ कहने जा रहे हैं। वैसे वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं, वृंदावन की लीलाएं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भक्तों को लीला स्थलियों में भ्रमण कराने के लिए ले जाते हैं, सुंदर सुंदर कथाएं वहां करते हैं, और बीच बीच में इसकी झलक हमने आज सुबह भी सुनी। तो विश्व प्रभु हम सबके बीच में आए हैं, इसीलिए बड़ी प्रसन्नता की बात हम सबके लिए। आशा करते हैं कि वो ऐसे समय समय पर आया करेंगे। ठीक है, विश्वरूप प्रभु की जय। हरे कृष्णा।
निष्प्रभ होते हैं, किसी से कोई किसी की अपेक्षा नहीं करते, सारा जीवन जो है समाज के लिए वो बाह्य दृष्टि से वृद्ध होते हैं और भगवान के लिए हमेशा जीवित रहते हैं। नहीं तो फिर वैसे भी इस दुनिया में जीने से क्या लाभ है? भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से आसक्ति नहीं है, भगवान से आसक्ति होने का प्रयास भी नहीं है, तो जीवित शव समान, मुर्दे के समान हम जी रहे हैं, सब जगह से मुर्दे चल रहे हैं। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो कृष्ण भगवान से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, वही जीवित है इस दुनिया में। और ऐसे हम सब लोगों को जीवित करने का प्रयास संत लोग करते हैं, इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा जीवित नजर आते हैं कभी कभी। हम सब लोगों को रेडी रहना चाहिए। ऐसे ही सभी बद्ध जीवों की ऐसी दर्दनाक स्थिति को देखते हुए भगवान ने बड़ी कृपा करते हैं। यही कृपा का स्वभाव जो है संतों में आता है, क्योंकि जिनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं वो भगवान के गुणों का दर्शन देते हैं, भगवान के गुण से प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे हम सब लोगों के लिए भगवान सोचते हैं कैसे किया जाए कलयुग के बद्ध जीवों के लिए, इस कलयुग के सत्ययुग के द्वापर युग के त्रेता युग के सभी लोग जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं वो बद्ध जीवी होते हैं, तो दुनिया में आएंगे क्यों? और भगवान जो है वो उनके कल्याण के लिए नाना विध प्रकार के योजनाएं बनाते रहते हैं। उसमें से एक योजना उनकी ऐसी है कि वो खुद अवतार लेते हैं, अनेक कार्य करते हैं, अपने ग्रंथों को भेजते हैं, ग्रंथों के अपने सारे विचार जो है क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में वो सब ग्रंथों के रूप में प्रकट करते हैं, फिर अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा ऐश्वर्य, सारा व्यक्तित्व, सारी कृपा, सारी दया, सब कुछ उसमें अर्पण करते हैं और नाम हमको प्रस्तुत करके ले लो, जीवन का उद्धार कर लो, स्वयं विग्रह के रूप में आते हैं और निजी सेवा आपको हमको देने का व्यवस्था करते हैं। तो भगवान अनंत रूप से हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्था करते हैं, और एक जो है वो तो सबके ऊपर कड़ी होती है, जो स्वयं अवतार लेते हैं, स्वयं आते हैं, कोई जरूरत नहीं उनको अपना धाम जो नहीं, उनके धाम में हर वृक्ष जो गर्भ वृक्ष है, हर कर्ण जो है वो चिंतामणि है, हर गाय सुरभि है और अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती है। कोई दुख नहीं है वहां पर, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बदबू नहीं है, ये तो सब नेगेटिव चीज है, कोई नहीं है, क्या है, चिरंतन आनंद है, सुंदरता है, माधुर्य है, प्रेम है, वात्सल्य है, कौटुंबिक वातावरण है, एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम है, सब पारिवारिक दृश्य है वहां पर, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई निरपेक्ष भाव है, कोई स्वार्थ नहीं है किसी के बीच में, ऐसे जगह पर आप रहना चाहोगे कि नहीं? वहां पर कोई शत्रु नहीं है, कोई वहां पर कोई हिंसा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ऐसी सुंदर जगह में वो रहते हैं, सब लोग उनके पार्षद जो है अनंत मात्रा में उनके साथ में रहते हैं, अनंत काल प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं। इतना सब होने में भी ऐसा हम लोग रहेंगे तो हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे, मग्न हो जाएंगे इस स्थिति में, खुद को आनंद का अनुभव करने के लिए भोगने के लिए, भगवान कैसे हमारे ऐसा होने पर भी तड़पते रहते हृदय से, हम सब लोगों के लिए, हम सब लोग इस दुनिया में उनको छोड़कर आए हैं, उनको छोड़कर यहाँ पर कुछ कुछ भोगना चाहते हैं, वो भी सब टेम्पररी है, क्षणिक मात्र है, शरीर के स्तर पर है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, चिरंतन कुछ का कुछ स्वभाव नहीं होता है आनंद का, बीमार जाते हैं, बुरा बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सुंदर से कुरूप हो जाते हैं, सुंदरता तो वही भी नकली है, क्योंकि वो भी नष्ट हो जाती है। और यहाँ का सबसे बड़ा एक दुर्गुण है, सब जगह बदबू आती रहती है, शरीर से भी आती है, यहाँ से भी आती है, वहां से भी आती है, कहीं भी जाओ प्रधानता जो है वो बदबू की है, दुर्गंध, भगवान के नाम में सुगंध ही सुगंध। अरे स्वर्गलोक में भी सुगंध है, एक एक कोष तक देवताओं के शरीर से सुगंध आती रहती है, भगवान के नाम में तो दूर दूर तक करोड़ों माइल तक हरेक के शरीर से दिव्य गंध आती है, यहां तक कि भगवान भी अपने भक्तों को उनके शरीर के सुंदर गंध से पहचानते हैं। राधा रानी को, सखियों को, सखाओं को, माताओं को, पिता को, वो दूर से आते हैं तो पहचानते हैं माता रानी है, क्योंकि शरीर से ऐसे विशिष्ट, जैसे हम जैसे लोगों का कैसे होता है, एक विशिष्ट स्वरूप है हमारा, हमारा चेहरा जो है वो हमारा ही है, किसी का चेहरा ऐसा नहीं होता है। इवन जुड़वा भाई में भी चेहरे सेम दिखते लेकिन अलग होते, हम लोग एक यूनिक विशिष्ट हमारा स्वरूप है। वैसे ही भगवान के धाम में विशिष्ट सबका स्वरूप है ही, विशिष्ट गंध भी है सबके शरीर में। तो सब सखियां बोलती है कि राधा रानी आएगी नहीं, आई नहीं यार, तो देखा झूठ बोल रही है, वो आ रही है, गंध से उनको पहचान। तो ऐसा दिव्य धाम भी छोड़कर वो यहां पर आते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब भी जो यहां पर तड़प रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, सुख भोगने की लालसा में, सुख भोगने के भ्रम में यहां तड़प रहे हैं, उनके साथ चले और उनके साथ में जो दिव्य आनंद है वो बांटना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई आनंद बांटना नहीं चाहता, देखो तो दुनिया में सब लोग अगर देना चाहते हैं तो खुद के लिए आनंद चाहते हैं और दूसरों को दुख देने को तैयार है। ये दुनिया का स्वभाव, ऐसे कठोर दुनिया है। और अगर हमको आनंद मिलते हुए किसी और आनंद को, किसी को आनंद मिल रहा है तो भी उसको कष्ट होता है, मुझे भी होता है, शायद मुझे ज्यादा तो नहीं मिलता हो, ऐसा स्वभाव लोगों का यहाँ पर, क्योंकि ये भौतिक दुनिया ही ऐसी है। फिर भी भगवान ऐसे जगह पर आते हैं जहां पर दुर्गंध है, जहां पर जन्म मृत्यु है, जहां पर मनुष्य का उदाहरण करके आते हैं और लोग उनको मनुष्य समझते हैं, उनकी अवहेलना भी करते हैं, उनको अलग तरह से व्यवहार करते हैं, वो भी स्वयं कभी कभी शिकार हो जाते हैं इस तरह से द्वेष की भावना का, जो दुर्योधन थे, जो रावण थे, सामना करते हैं, अनुभव करते हैं, क्या करें, लेकिन आते हैं। जैसे कोई बहुत ही साफ सुथरा सफेद रंग की परीट खड़ी वाला स्टार्स किया हुआ कपड़ा पहन के अगर कोई गटर में उतर जाए कैसा होगा, कैसा लगेगा? होली में बहुत सारा दिन होली खेलने के बाद में आप फिर घर में जाकर स्नान करते हैं और फिर दोबारा कोई पिचकर लेकर आपके सामने आते हैं तो कैसा लगता है? अरे फिर गंदे हो जाएंगे। ऐसे तरह से ऐसी जगह पर भगवान आते, कितनी करुणा होगी भगवान के द्वारा, सोचो इतनी अनंत करुणा है। केवल हम सब लोगों के, हम सब जीवों के प्रति जो करुणा और वात्सल्य और परी भक्ति है उसके प्रति आते हैं। और उसमें सबसे जब अनंत रूप में आते हैं, वो अनंत प्रकार के रूप धारण करके आते हैं, ऐसे नहीं एक ही बार एक ही रूप में एक ही प्रकार की लीला हर बार करते हैं, सेम रिपीटेशन, तो सब लोगों को फिर बोर हो जाएगा। तो उसमें भी विविधता लाते हैं, कभी नरसिंह भगवान, कभी आधा पुरुष, कभी आधा सिंह, कभी सर पे सर जो है घोड़े का सर, मनुष्य का शरीर, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कभी पूर्व बनकर आते हैं, कभी वराह बनकर आते हैं, कभी सुंदर बालक ब्राह्मण बालक बनकर आते हैं, कभी कितने प्रकार के रूप, कभी पशु धारण करके आते हैं, धनुष धारण करके आते हैं, मूल्य लेके आते हैं, हमको रिझाने के लिए आते हैं, आकर्षित करने के लिए, अपने गौरव धाम का जो आनंद है उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते हैं, ताकि हम सब लोग आकर्षित हो जाए। इतना सा होने पर भी हम उनसे आकर्षित नहीं होते, हम सोचते क्यों ये बोर कर रहे हैं, हमारे इंद्रिय भोग में व्यत्यय ला रहे हैं। तो ऐसे भगवान जब श्री कृष्ण बनकर आते हैं तो अपने पूरा व्यक्तित्व, पूरा ऐश्वर्य, पूरे गुण, पूरा कला, पूरा उनका जितना भी सुंदर सुंदर उनका व्यक्तित्व का जो भाग है सब कुछ लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में वो आते, अपने गौरव धाम का एक हिस्सा जो है वो पृथ्वी को उतार दे, क्योंकि एक भी कदम वो अपने गौरव धाम से बाहर छोड़ते नहीं है। जब आते हैं कहीं तो स्वयं गौरव धाम को ही लेकर आते, कुछ हिस्से खुद के नमूने के लेकर आते। राधा रानी को जब बताया उन्होंने कि अभी हमारा पृथ्वी पर अवतार लेने का समय हो गया है, राधा रानी कहते हम नहीं चलेंगे आपके साथ, जहां पर श्री वृंदावन नहीं है, श्री गोवर्धन नहीं है, श्री यमुना जी नहीं है, वहां पर हमको नहीं जाना है। वो कहते आपका मंतव्य जानकर हमने पहले से ही ये सब वस्तुओं को पहले से ही भेज दिया है, मैं जानता हूं कि आपको यमुना जी, गोवर्धन, वृंदावन बहुत प्रिय है, उसके बिना रह नहीं सकती, मैंने पहले ही उनको पृथ्वी पर भेज दिया है। उसके बहुत पहले ही गोवर्धन जी द्रोणाचल के पुत्र बनकर वहां पर विराजमान हो गए थे और हिमालय की तरफ से उठकर बुलत से अपनी लीला की सहायता से गोवर्धन वृंदावन में विराजमान हो गए थे। जमुना जी भी तुरंत गौरलोक धाम से निकलते हुए वैकुंठों को पार करते हुए गंगा नदी को पार करते हुए यहाँ पर वामन देव ने ब्रह्मांडों को छेद किया था, वहां से प्रवेश करते हुए सब लोगों को पार करते हुए पृथ्वी पर आकर विराजमान हो गई थी। सब सीन जो है एकदम तैयार था भगवान के लिए। और भगवान को इन सारे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उनमें से पृथ्वी लोग बहुत पसंद है। पृथ्वी लोग ऐसा एक लोक है जिसमें बहुत सुख है, बहुत कम सुख है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य जन्म जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान का भजन और पूजन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे तो वहां से गौरव धाम का रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरे लोग से है क्योंकि भगवान वहां पर अवतार लेते हैं अलग अलग लोगों से। इस पृथ्वी लोक में हमको भारतवर्ष जो है बहुत ज्यादा प्रिय है और भारतवर्ष में भी उनको मथुरा मंडल जो है सबसे अधिक प्रिय है। मथुरा मंडल में से भी अधिक उनको प्रिय है 108 वन और 108 वन में से भी उनको 12 वन बहुत प्रिय है। 12 वनों में से भी उनको 1 वन सबसे प्रिय है जो वृंदावन धाम श्री वृंदावन। और जो वृंदावन आज हम समझते हैं वो वृंदावन तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत सीमित है, जो पौराणिक वृंदावन है ऐतिहासिक वृंदावन है उसमें नंदगांव बरसाना गोवर्धन जमुना जी चावट ये सब वहां सम्मिलित है उसके अंदर। और उस वृंदावन में कई हिस्से हैं और उसमें कई उपवन भी है, अधिवन भी है, प्रतिवन भी है, कुछ वन भी है। तो नंदगांव और बरसाना अधिवन के रूप में माना गया है इनको। और ये जैसे हमारा घर होता है ना तो हमारे घर में कई हिस्से होते हैं। हमारे घर में आंगन होता है, गाड़ी रखने की जगह होती है, तो बाहर बैठने का हॉल होता है, दीवान खाना लेते हैं, फिर बैठने का जगह होती है, कुछ कुछ नाश्ता करने की जगह होती है, सोने की जगह होती है, भोजन बनाने का असली घर होता है, तो पिछला हिस्सा होता है। तो सभी हिस्सों में सभी लोग प्रवेश नहीं करते उसके अंदर, करते क्या आपके घर में? पुष्पन आए तो अपने बेडरूम में घुस जाता है, नहीं था ना ऐसे। हाँ दूध वाला आया तो कहां तक पहुंचता है? आंगन तक पहुंचता है। यदि मित्र आएगा तो कहां तक पहुंचता है? तो बहुत ही अति प्रिय मित्र आएगा तो एकदम घर के सभी हिस्सों में अपने आप जाएगा, किधर भी घूमेगा कुछ भी करेगा। वैसे भगवान के वृंदावन जो सबसे प्रिय है वो भी उनके घर है, पूरा जो ब्रजमंडल है उनका घर जैसा ही है। और कैसा भाव है उनका कि बाहर जब ही सब अवतार लेते हैं वो द्वारका में लेते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं उधर और मथुरा में रहते हैं और कहीं जगन्नाथपुरी में रहते हैं और कहीं साउथ इंडिया में जगन्नाथ में जाते हैं, सब जगह ईश्वर भाव में रहते हैं, सब जगह सब लोग उनको जानते हैं कि ये परम भगवान है, सड़ा ऐश्वर्य पूर्ण है, वो भगवान है ये भी जानते हैं, उनका सब ऐश्वर्य भी जानते हैं, महात्मा को भी कुछ हद तक समझते हैं। इसलिए वृंदावन में जैसे आते हैं तो वो स्वयं भी नहीं चाहते कि वो भगवान रहे और भगवान है इसलिए उनको याद भी रहे ये भी वो नहीं चाहते हैं, और जो उनके साथ रहते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि वो भगवान है। सबसे बड़ी विशेषता है भगवत ऊपर भी गौरव धाम में भी यही वातावरण है, मैं बताना भूल गया एक बात को, वहां पर वो एक घर के व्यक्ति जैसे रहते हैं गौरव धाम में, वही भाव उनका वृंदावन धाम में यहाँ पर भी है। जब भूमि पर वृंदावन आता है भाव में वृंदावन है तो उसमें उनका यही भाव है, कोई किसी के माता किसी के पिता किसी के भाई किसी की बहन इसी भाव से रहते हैं, किसी का मित्र किसी का सखा किसी का प्रियतमा ये सब इसी भाव में रहते हैं, भगवान के रूप में रहते नहीं है। और कितना भी कभी कभी कोशिश करते हैं जैसे ही खेल खेल में अपना ऐश्वर्य दिखाने का तो उनका ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है, टिक नहीं पाता है। ऐसे ही एक बार भगवान ने सोचा कि हमको थोड़ा मजाक करें गोपियों का, तो रासलीला से अंतर्धान हो गए और रास्ते में विष्णु मंत्र गए चार पूजा वाले, सब गोपी आ रही है पूछते पूछते कहाँ है, लताओं को पूछ रही है, बताओं को पूछ रही है, रैया को पूछ रही है, सबको पूछ रही है कहीं हमने आपने हमारे कन्हैया को देखा है। फिर पूछते पूछते आ रही है व्याकुल होगा तो खड़े हैं विष्णु महाराज जी, उनको भी पूछते हैं क्या आपने कृष्ण को देखा है, समझो कि आप जो यहां से जा रहे हैं और टर्न करते टर्न करते आपको चतुर्भुज विष्णु महाराज खड़े दिखते, तो आप क्या करेंगे? उनको पूछे नहीं, हमारा घर का रास्ता नहीं, गदगद प्रणाम करेंगे, श्लोक गाएंगे, प्रणाम करेंगे, गदगद हो जाएंगे, भावना से महाराज आप यहाँ कैसे आते, तो वैकुंठ गलती चाहिए। लेकिन गोपियां उनको पूछ रही, आपने कृष्ण को देखा है? और कृष्ण भी ऐसे व्याकुल हो रहे उनको प्रेम देखकर, वो कहते कि वो इस तरफ गए, चार भुजाओं में एक भुजा बताते इस तरफ गए, जाते हैं वो रुकते रुकते। राधा रानी जब आती है एंड में, वो भी वो तो गता पता वो पूछ ही रही है, लेकिन वो इनके सामने घोरा घूम रहा है, वो घोरे को पूछ रही है कि आपने कहीं बस वार्तालाप कर रहे हैं उसके साथ में, समझ के कि वही कृष्ण है जो खो गए हैं उनसे, उनसे वार्तालाप कर रही है। और पूछते पूछते उनसे विष्णु जी के पास आती है और पूछते हैं कि हमने आपने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? कि उनकी व्याकुलता का पराकाष्ठा को देख कर रहे ये दो भुजाएं उनकी जो कुछ कुछ धारण करके खड़े थे, वो शंकर चक्र पद्म गदा वो सब पिघल जाते और अपनी इच्छा के विरुद्ध फिर द्विभुज हो जाते, मतलब ऐश्वर्य उनका लुप्त तो हो जाता है प्रेम के सामने, और जो माधुरी है वो प्रधान हो जाता है। तो कई बार उनको चाहते हुए भी वो अपना ऐश्वर्य वहां पर दिखाने का प्रयास करते लेकिन दिखा नहीं सकते और लुप्त तो भी हो जाता है। ऐसे ही वो एक बार स्वामी मन में गोपियों से ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, जानते हो मैं ही राम हूं, मैं ही धनुष बाण लेकर अवतार लिया था, मेरे भैया जो है ना ये लक्ष्मण मंत्र आए थे और हमने समुद्र के बीच में सेतु बनाया था, कितना मिलता था 100 योजन का है ना, 100 योजन था रामेश्वर से लटका तक समुद्र में बनाया, जैसे बड़ी बड़ी बनाने में कहते ना कुशार के आम ऐसे बड़े बड़े बोल रहे थे बातें, तो सब गोपियां उनका मजाक उड़ा रहे थे, हमारे सखा उनको तो ये सब सखा लोग उनको हरा देते थे उस कुश्ती में, तो क्या बोल रहे हो कि हम बांध लेके आए थे और उससे सेतु बांध रहे थे, ऐसे सवार्तालाप होता है वहां पर भगवान के साथ में। मनमोहन सिंह तो अपने मंदिर में आया और बोलेगा कि मैं पत्रकार हूँ देश का, तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट चलाता हूँ, ऐसा आर्थिक अर्थशास्त्र में विद्या का मैंने वो डिग्री लिया है, अगर चलो क्या तो आप सरदार हो उधर पंजाब से आए हो, क्या बड़ी बात चल रही है, बैठो यहाँ पर कथा करने वाले महाराज जी सुनो, ऐसे करेंगे तो पत्रप्रधान क्या करेंगे, तुरंत सिक्योरिटी गार्ड आप कि पत्रप्रधान है समाज की बात करें, ऐसे भगवान से बातें होती है, वो तो देश के एक मामूली देश के ऐसे मरने वाले होते मरते ऐसे इंसान है, कभी न कभी अपनी सब याददाश्त हो जाएंगे वो उम्र होने के बाद, मैं भी कभी प्रधानमंत्री बना, ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार मुमकिन नहीं है, भगवान के साथ में ऐसा मजाक किया जा रहा है, वो स्वयं कृष्ण थे, कृष्ण भगवान स्वयं राम थे ना पिछले अवतार में, तो फिर वो गोपियां बोलते चलो चलो दिखाओ आपको, अगर तुम सही में राम थे ना तो दिखा दो, तो फिर उनको दिखाना पड़ा, खेल खेल में दिखाना पड़ा, सभी बंदर बने उनके सखा लोग और वो राम और लक्ष्मण बने और उन्होंने झट से आम के आंखों के सामने वो ब्रिज बना के दिखाया, कामे मन में जगाया आदमी सेतु पर बनाने वहां पर भगवान ने दिखाया, और फिर वो सब भूल गए थोड़ी देर के बाद, माधुरी का इतना प्रभाव है वहां पर, इतना प्रभाव है कि वो खुद जो उन्होंने देखा ना स्वयं राम बने हुए हैं सेतु बंधरा उनके आंखों के सामने, अचानक उस तरफ से रावण प्रकट हो गए और इन्होंने उनको बाण से मार डाला, रावण का वध भी हुआ और रामेश्वर भी वहां पर उत्पन्न हुआ जहां से उन्होंने पहले राम बनकर पहले जिन्द्र की पूजा की शिव जी के, और वहां से सेतु बंध आरंभ किया, जो जो पत्थर फेंके वो तैरा के दिखाया उन्होंने, ये कृष्णलीला की बात है। इतना होने के बाद भी 5 मिनट के बाद तुरंत भूल जाते हैं वो सब, सब उनका खेलते हैं मजा करते हैं, क्योंकि वो बनाया ही है भगवान धाम ऐसा जहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है, कितना भी सोचने पर याद करने पर वो भूल जाते हैं कि हमारे भगवान, जैसे कि वो जब गोवर्धन लीला में थे गिरिराज उठाए थे तो एक तो सब इंद्र का पूजा कैंसिल कर दिया, तो इंद्र जी परेशान है हमारे और इतनी भयंकर वर्षा हो रही है इनकी वजह से ही हो रही है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, फिर भी बेचारे बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो बचाओ आप ही बचाओ, उन्हीं के सामने जा रहे हैं, हाँ यही ब्रजवासियों की भी विशेषता है, वो भी इनकी इतने प्रेम के योग्य क्यों है, क्योंकि कुछ भी हो जाए उनके मन के विपरीत हो जाए अनुकूल हो जाए उनकी शरण वो छोड़ते नहीं है, उनकी वजह से विपरीत हो रहा है। बाह्य दृष्टि देखा जाए तो उनकी वजह से ही वर्षा हो रही है, गायें भैंसे बह रही हैं, घर बहा बहा जा रहा है और सब नुकसान हो रहा है, तो हाहाकार मच रहा है, फिर उनके पीछे जा रहे हैं और उन्हें चलो हमारे पीछे, तो वो पीछे जा रहे हैं उनके। तो वो क्या करते हैं कि गिरिराज जी के पास उनको लेके जाते हैं, और कुछ कुछ कथाओं में ऐसे लिखा है कि उनको पता ही नहीं था कि क्या करने वाले, इतना श्रद्धा थी ब्रजवासियों को कि क्या करने वाले हैं पता नहीं था। अचानक उसने गिरिराज जी को उठाया छतरी की तरह। उसके पहले कथा आती है कि उन्होंने कुछ बार बार उनको बताया था कि मैं जाके गिरिराज जी को उठाने वाला हूँ, तो वो बोले है तो क्या गिरिराज जी उठाएगा, भला कर रहे हैं हमारे साथ, सब सकारों बोल रहे हैं। तो कुछ लोग सकारों डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कैसे बोल रहा है कन्हैया, तो कन्हैया ने क्या किया जाके एक कदम का पेड़ था उसको उन्होंने ऐसा उठाया और उस पन्नों कपड़ा कैसे निचोड़ते ना ऐसा निचोड़ दिया, बोला ट्विस्ट कर दिया बोला उसको, तो शक्ति का प्रदान प्रदर्शन करने के लिए, और बाल बालों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। अभी भी पेड़ वहां पर है, आप जाइए देखिए बेटा गांव में एठा कदम कहते हैं उसको, ऐड दिया उन्होंने पूरा पूरा ट्विस्ट कर, अभी भी देखेंगे ना कदम के पर तो बहुत देखेंगे आपको वहां पर, सब कदम पेड़ के देखो और उस पेड़ को जाकर देखो, नहीं तो वो शरीर जीवित नहीं है, पेड़ को उसका अवशेष वहां पर पूरा ट्विस्ट करके रखा। गिरिराज को उठाया उन्होंने, एक हाथ में उठाए अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से इंद्र के सबसे बड़े शक्ति को उन्होंने परास्त कर दिया, कि खड़े आराम से पंचरी में जा रहे हैं और माता सोच रही अरे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, माता अपने भाव में है जिले तो बालक ही बालक है, वो सोचती सुबह से तुमने माता ने कहा भूखे होंगे तो कुछ खा लो, तो वो कुछ माता खिलाने का प्रयास कर रही है, और बाबा कह रहे अरे तुमने इतनी देर से उठा कर रखा है हाथ में दर्द होता रहेगा, तो मैं कुछ सपोर्ट देता हूँ उसको, सपोर्ट दे रहे हैं उसको, डंडा लगा के हम मंदिर में लगाते हैं ऐसे भगवान को सपोर्ट, ऐसे वो वात्सल्य भाव से लगा रहे हैं सपोर्ट। फिर कुछ लोग सोच रहे अरे इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा पर्वत उठा के खड़ा है, सब लोग डंडा लगा के सपोर्ट दे रहे हैं, और दोस्तों से बाकी सब सोचने लगे कि अरे देखो इतने बड़े बड़े ब्रजवासी जो है सभी बाल बाल जो है गोपाल जी सब गोपाल वो पकड़ के उनकी वजह से गोवर्धन खड़ा है उनकी जगह पे, तो भगवान थोड़ा सा उसको हिला देते हैं, सब लोग समझ देते अरे मैं वही। तो फिर सखारो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको कि कैसा उधर भगवान जो है इतना सब लीला कर रहे हैं, अद्भुत लीला का दर्शन दे रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मतलब ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं, लेकिन बाल बाल जी भी क्या सोच रहे हैं, भगवान भी क्या सोच रहे हैं, बाल जैसे अरे माता सोच रही है कि मैंने ना बहुत अच्छा काम किया, मैंने 100 गायों को अलग से खाना खिलाया था, खास खिलाया था स्पेशल, और उनका दूध का मैं दही बनाती थी, उनका उसी से मक्खन निकालती थी जिसको कमल की खुशबू आती थी, और ऐसे कमल की खुशबू आने वाले मक्खन खिलाने से आज जो शक्ति प्राप्त हुई है वही तो काम आई ना, देखो इतना खड़ा एकदम प्रेम से। तो ये सब डिस्कशन हो रहा है, विष्णु भैया सबसे डिस्कस कर रहे अपने उम्र की गोपियों से, और बार बार बोल रहे नहीं माता को पता नहीं है इसका रहस्य क्या है, सोच रहे थे उनको कोई बात नहीं इच्छा है खुशी होने का, हमको क्या रुक, लेकिन रहस्य उनका ये नहीं है कि क्यों उठा पाए, हमने उनको रोज कुश्ती का ट्रेनिंग दिया और ये हमारे शिदा मुझे उनको रोज हराते इनको हरा हरा के हरा हरा के इतना पुष्ट कर दिया है, आज काम आया देखो तो ऐसा चर्चा हो रही है। भगवान अपना किसी भी अवतार में ऐसा ऐश्वर्य नहीं दिखाया उन्होंने इतना अद्भुत तरीके से, ऐसे तो बहुत सारा ऐश्वर्य उन्होंने दिखाया है, लेकिन ऐसा चटपटे रूप में मधुर रूप में ऐश्वर्य जो है उन्होंने कहीं भी नहीं दिखाया है, इसलिए भगवान की लीला है वो अतुलनीय है, कहीं भी उनका तुलना नहीं है। तो ये जो ग्वाल वालों का डिस्कशन हो रहा है वो भी खुश होते जा रहे हैं, सखियां बोल रही नहीं इनको तो पता नहीं, कोई बात नहीं सोच रहे थे उनको अपने अपनी बात है अपने अपने खुशी हो रही तो कोई बात नहीं। तो वो जब वो डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो छुप छुप के राधा रानी को देख रहे हैं तिरछी नजर से, और राधा रानी भी उनको प्रेम से देख रही है तिरछी नजर से, उस नजर का वो प्रभाव है, उसमें नजर में इतनी शक्ति है, इसके वजह से वो इतना बड़ा पर्वत जो है इतने आराम से उठा के खड़े तो बाल बाल ने सुन लिया उसको, ऐसे कह रहे तो क्या प्रूफ है उसका, तो अभी कैसे दिखाया आपको? अगर वही उठा रही है अपनी नजरों से पर्वत को, कैसे हम आपको बताए? तो कोई बात नहीं, जब ये समय आएगा तो आपको दिखाएंगे। तो फिर गोवर्धन लीला समाप्त हो गई। उसके बाद में बहुत दिन के बाद में ग्वाल वालों को याद आई, अरे इन्होंने ऐसे कुछ कहा था, देखते हैं क्या है, सच है ऐसे। वो जाते हैं, राधा रानी उनको सबको गोवर्धन के पास लेके जाती है और अपनी नजरों से वो गोवर्धन को उठाती है। ऐसे देखती नीचे, धीरे धीरे ऊपर उठाती है, आकाश में देखती है, गोवर्धन आकाश में जाती है। बहुत देर तक आकाश में खड़े रहते हैं। तो ठीक है, अभी समझ में आया ना आपको? ये है वृंदावन का, वहां पर कोई भगवान को पहचानता नहीं कि भगवान क्या है। भगवान चाहते भी है कि वो ऐसे रहे। तो ऐसे चटपटे लीलाओं से ये वृंदावन धाम जो है भरा हुआ है। और ये सब आपके लिए है, ये मत समझना कि भगवान को यहाँ पर उसका हिस्सा पैदा करके उधर प्रस्थापित करके यहाँ पर आनंद लेने की जरूरत है। भगवान के धाम में इतना आनंद है, लेकिन वो केवल हमारे लिए यहाँ पर प्रकट करते ताकि हम लोग उनके ओर आकर्षित हो जाए। तो ऐसे ही तो मैं वो घर की बात कर रहा था, अपने घर में कैसे हिस्से होते हैं, वैसे ही वृंदावन धाम में भी कई प्रकार के वन हैं, कई प्रकार की लीलाएं होती हैं, लेकिन उसका अंदर का हिस्सा जो है वो बरसाना नंदगांव और जावर है। और वो भगवान के अंतःपुर की तरह है, इसमें हर लोग हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता। आज भी देखो, आप जब जाते हैं वृंदावन में यात्रा करने के लिए तो बाकी बिहार जाते हैं और कुछ कुछ मथुरा में दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहन कर महाप्रसादी चले जाते हैं। बहुत कम लोग जो है हमारे जैसे भाग्यवान लोग जो है वो सब लोग गोवर्धन भी जाते हैं, गोवर्धन में बहुत लोग जाते हैं परमा देवी में। फिर उसके भी भाग्यवान लोग जो नंदगांव और जावर और काम्यवान और बरसाना और आगे आगे जाके पहुंचते हैं, क्योंकि वहां की लीला जो है वो बहुत ही अंतरंग है, वो सबके लिए वहां पर प्रवेश नहीं देते। और इसलिए वहां पर उन्होंने राक्षसों को प्रवेश नहीं दिया। देखो सब जगह वृंदावन में, मधुबन में, तालवन में, सब जगह पर राक्षसों का, राधापुर में भी हुआ है कृष्णासुर का वध हुआ है, लेकिन बरसाने में कभी आपने सुना है राक्षस का वध हुआ है? कोई कथा सुनी आपने नंदगांव में वध हुआ है ऐसा सुना है? कभी नहीं हुआ। इसका भी विशेष कारण है, क्योंकि वहां पर इतनी उत्कट प्रेम की लीला करते हैं भगवान कि वहां पर उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। राक्षस आता भी है तो उनको मार सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उनको, लेकिन उसमें व्यवधान होता है ना, कुछ समय जाता है उसके अंदर। फिर लीला के अंदर जो उत्कटता है, जो तीव्रता है, जो गहराई है, जो मग्नता है, वो सब नष्ट हो जाती है। बाकी जगह चल जाता है लेकिन वहां पर नहीं चलता, क्योंकि वहां पर सखियों के साथ में बहुत प्रेम की लीला करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, राक्षसों वहां पर नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक लीला किया। वो आप जानते हैं ना कि वो जब उनको नंद महाराज को और ऋषभानु महाराज को संतान नहीं हो रही थी, तो वो उसने सोचा कि हम जमुना किनारे जाकर बसेंगे, तो जमुना जी की कृपा से, उनकी पवित्रता से, उनकी शुभता से, सुचिता से हमको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और यथावकाश हमको पुत्र प्राप्ति होती भी है, अंत महाराज को कृष्ण बलराम प्राप्त हो जाते हैं और ऋषभानु महाराज को रावण राधा रानी प्राप्त हो जाती है। फिर उनका आतंक बढ़ जाता है राक्षसों का, क्योंकि कंस हमारे महाराज रोज ना रोज किसी को भेज रहे हैं, इसको भेज रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, कभी औरत आ रही है, कभी आदमी आ रहे हैं, कभी हवा आ रहा है, कभी झंझावात आ रहा है ना, तो परेशान हो जाते हैं। सोचते चलो लौट जाएंगे अपने वापस, अभी ये अभी सुरक्षित नहीं रहा स्थान। जब वहां से निकलते हैं तो साथ में निकलते हैं ऋषभानु महाराज, नंद महाराज। बड़ा सुंदर वर्णन उसका ग्रंथों में आता है, कैसे उन्होंने सफर किया, यात्रा की गोकुल और रावल से, फिर वो छठीग्रा और राधापुर के आसपास उनका तंबू लगा, कि वहां से कैसे वो आगे बढ़े। फिर ऋषभानु महाराज जो बरसाना धाम बस गए, नंद महाराज नंदगांव में बस गए। और दूसरे दिन जब भेजा उन्होंने राक्षसों को, तो कोई मिला नहीं वहां पर उनको, उन्हें सब सुनसान हो गया, कोई है नहीं। तो कंस को बड़ा आश्चर्य हो गया, तो अपने सेनापति को भेज दिया उन्होंने। वो ढूंढते ढूंढते गोकुल से आगे 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 नंदगांव तक पहुंच गया। और नंदगांव में पहुंच गया तो देखा, अरे तो कृष्ण बलराम यहाँ खेल रहे, चलो पकड़ लो इनको अभी। तो जाके इनको जब स्पर्श करते हैं, चार लोग आते हैं, जैसे ही कृष्ण बलराम को हाथ लगाते हैं पत्थर हो जाते हैं, तुरंत पत्थर बन जाते हैं। और फिर वो बड़े बड़े जो भयंकर पत्थर की जो विकृत आकृति थी उसका यशोदा मैया ने फिर कृष्ण भगवान बलराम जी को डराने के लिए इस्तेमाल किया। हाउ बोला वो, देखो हवा आ जाएगा, तुरंत भागते थे। खल में इतने मग्न होते थे, इतने मग्न होते थे रोड़ी मैया जाके कोशिश करती थी, सुनते नहीं थे उसको, दीदी तू जाओ, यशोदा मैया जाके पुकारती थी, कभी भी सुनते नहीं थे, उनको हवा का डर दिखाती थी, तो फिर भाग के आते थे लंच के लिए। हाँ, ये वत्सपाल लीला के अंदर वर्णन आता है। एनीवेज, तो जब ये चार लोग भेजा, वो भी नहीं लौट के आए, तो स्वयं खंभ आए, मेरा काल जो है वो किधर है, उसको मुझे पकड़ना है। तो जैसे ही वो बरसाने के हद में आए, तो वो स्त्री बन गए, उनका शरीर स्त्री का हो गया। भागवत में और भी ऐसी कथा आती है, वो शिव जी के वन में वो सिद्धू में गए थे, वो भी ऐसी कन्या हो गए, जैसे बन गए। तो ये कंस कन्या बन गए, तो बहुत परेशान हो गया। आप अगर गर्भ संहिता पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कंस का पूरा पराक्रम दिया उसके अंदर, कैसे कैसे राक्षसों को कंस ने अकेले हाथ, एक हाथ से उनको सबको परास्त कर दिया था, और सब लोगों ने प्राण की याचना की थी उसे, और वो उनके मांडलिक बन गए थे, उनके दास बन गए थे, उनके मित्र बन गए, उनको टैक्स देने के साथ उनके मित्र बन गए वो। तो हम लोग सोचते ना कि भी कंस को भगवान ने एक मुक्का मारा और मार दिया, उसको घसीट लिया, बड़ी बात नहीं सर। लेकिन कंस की पहली महानता हमको सुनना चाहिए, कंस कितना महान था, शक्तिशाली था। तब हमको पता चला कि ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट को इस बालक ने, कृष्ण भगवान ने एक मुक्का मार के परास्त कर दिया। तब हम समझ सकते हैं कि ऐसे महान, उसको द्रोणाचार्य को परास्त किया था, अरिष्टासुर को परास्त किया था, बकासुर को परास्त किया, सब लोगों को उसने परास्त करके अपने मित्र के रूप में अपने वश में रखा था उन्होंने। ऐसा कंस चक्रवर्ती सम्राट जिसको सब लोग डरते थे, अरे आपको पढ़ा होगा आपने कि वो जब कृष्ण का जन्म हो गया, कृष्ण जब वहां से गायब हो गए, तो मथुरा नगरी में कोई बात भी नहीं करता था उसके बारे में, सब लोग डरते थे इस विषय में बात नहीं करना, नहीं कंस ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। इतना डर था और इतना भय था, और सब ब्रज से भी सब लोग बिना छुटते हुए जाके टैक्स पेमेंट करते थे, उनको जाके ये अपने नंद महाराज भी पहुंचते थे वहां पर, इतना डरते थे कंस से। और कभी बात बात में कुछ झगड़ा हो गया तो लोगों को भी धमकी देते थे, कंस के साथ कंप्लेंट करेंगे, ऐसा कंस का स्थिति था। बहुत मान और सम्मान था उसका, लोग डरते थे, आदर करते थे, भले भाई के साथ में क्यों। वो चक्रवर्ती सम्राट कंस महाराज वहां पर कंसली गोपी बन गए, परेशान हो गए बहुत, और छह महीने तक उनको गोपियों ने कंडे लिखवाए उनसे, हाँ, अच्छी तरह से गाय के गोबर जब गिरेगा तो गोपुत्र से मिक्स हो जाएगा, फिर उसको ब्रजरज से मिक्स करना है, उसका मिश्रण करके अच्छी तरह से गोल गोल आकार के कंडे बनवाने हैं, फिर पेड़ पे, जमीन पे, यहाँ पर्वत पे, टीले पे, सब जगह चिपकवाने हैं, शाम को सूख जाएंगे तो इकट्ठा करना है, टोकरी में डालना है, गले में और सर पे रखना है, और वो घर में पहुंचना है, उसको स्टैक करना है, कभी कभी खेत में अच्छा सा घर बना के उसके अंदर भी स्टैक करना है। हाँ, इतना सब काम जो है छह महीने तक कंस ने वो काम किया है, और रोते रोते किया है, परेशान हो गया, सब भूखे तालियां मिल रही है, बड़ा अच्छा हो गया, हाँ बड़े महाराज बनते हो, राक्षस को भेजते हो हमारे कन्हैया को मारने के लिए, हाँ अच्छा हो गया। अभी हम सब लोग अगर कोई गोपी बनने का मौका मिलेगा तो कितनी खुशी से आंसू नहीं समाएंगे हम लोग, खुशी को आंसू भाएंगे, आनंद आश्रु। कंस को परम भाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन बाह्य दृष्टि से भाग्य प्राप्त होने से कुछ नहीं होता है, भावना बदलनी चाहिए। वैसे कई गोपियां थी वृंदावन में बरसाने में, सब लोग अपने आप को कितने भाग्यवान समझते कि हम ब्रज में भगवान की सेवा के लिए आए। कोई ये सोचने रहा कि मुझे बड़ी गोपी बनना है, यशोदा से कंपटीशन करना है, ये नहीं सोच रहे। बहुत छोटी छोटी गोपियों की बहुत अच्छी सेवा करती थी, वो गोबर में गोमूत्र में मिक्स होकर अपना जीवन बिताती थी, गाय को साफ करती थी, दूध निकालती थी, मक्खन जमाती थी, मंथन करती थी, गीत गाती थी। वही भाग्य कंस को प्राप्त हो रहा है, अगर कंस रो रहा है कभी मुक्त हो जाओ, कभी मुक्त हो जाओ सोच रहा है। इसलिए बाह्य दृष्टि से अगर भगवान भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे ना, कोई लाभ नहीं हमको उसका, क्यों लाभ नहीं है, हमको पहचाने नहीं ना, हाउ विल बी रिकॉग्नाइजिंग, कोई अनुभूति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई जानकारी नहीं। भगवान भी सामने खड़े हो जाएंगे तो बालक के सामने अगर देश का राष्ट्रपति खड़ा हो गया तो बालक को क्या पता है उसका, तो गेंद खेलोगे क्या ना सर, राष्ट्रपति देश का मैं क्या मतलब है उसे, गेंद खेलना आता है क्या। वैसे जब तक जानकारी अनुभूति और भाव नहीं होता है तब तक भारी दृष्टि से कृपा होने पर भी कोई लाभ नहीं होता। दुर्योधन क्या लाभ हुआ बताओ, शादी युद्ध बंदर गए भगवान के सामने, क्या लाभ हुआ, बोले अरेस्ट करो इसको, उसको कहता हो उसको दर्जी से बांधो, इसको जादूगर है। हमारे बोले चेटकू चेटकू है, विचक्राफ्ट क्या लागो उसको, भगवान के सामने अवतार लेने के बाद भी क्या लागो, तो बाह्य दृष्टि से कृपा करने से कोई लाभ नहीं होता, हृदय से परिवर्तन होना चाहिए। हृदय परिवर्तन से लाभ ही लाभ है, भगवान नहीं भी रहेंगे, गोपियां सौ साल तक विरह में रही लेकिन परम उच्च अवस्था में रही, क्योंकि हृदय का भाव है। तो फिर कंस जो है वो छह महीने रोते रोते गर्भित हुआ है, फिर गोपियों से खौफ गिड़गिड़ाए, फिर गोपियों ने दया कर उनको राधा रानी के पास ले गए, वृषभानु महाराज की उंगली पकड़कर जब राधा रानी वहां पर आई तो वृषभानु महाराज के सामने कंस महाराज गिड़गिड़ाए, कन्या के रूप में थे वो, कन्या के शरीर में, बोले कृपा करो इसे छुड़वा दो मुझे, हम लोग सब लोग भक्ति में याचना कर रहे हैं कि हमको वो स्वरूप दे दो, आपकी सेवा में ऐसा स्वरूप प्राप्त करा दो, वो प्रार्थना करे छुड़वा दो छुड़वा दो छुड़वा दो, ऐसा दुर्भाग्य दे देखो, भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, राधा रानी कृपा कर रही है, फिर भी उस कृपा को समझने की बुद्धि चाहिए ना, जब बुद्धि विपरीत है तो क्या लाभ है उसका, सब कुछ है, राधा रानी है, ऋषभानु महाराज है, गोपियां हैं, बरसाना धाम है, सब है, लेकिन कंस महाराज कोई लाभ नहीं उसका। प्यासा प्यासा आदमी जब क्या कहते हैं उसको नमकीन सागर में कूद लगाएगा तो क्या वो पानी पी सकता है, उसको नहीं पी सकता ना, सब नमकीन पास अगर पानी पीने से उसकी प्यास और बढ़ेगी और तड़पेगा, वैसे ही कुछ कंस की अवस्था थी, सब कुछ लाभ होने पर भी उसकी मति जो है वो नमकीन सागर की तरह है, उसको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर राधा रानी उसके बाद महाराज कहते चलो कृपा कर दो, बहुत बिगड़ रहा है बेचारा, बहुत दशा करता रहा है, तो राधा रानी कहती एक वादा करो दोबारा यहाँ पर लौट के नहीं आओगे ना, कोई तुम्हारा आदमी आएगा, सब कन्या बन जाएंगे, ध्यान रखना उस बात का। तो कंस महाराज वादा करते कि कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पर उन्होंने किशोरी कुंड में एक छलांग लगाई, उन्होंने कहा छलांग लगा दो पुनः अपना पुरुष का शरीर प्राप्त करोगे, फिर दोबारा लौट के नहीं आओगे। तो छलांग लगाते हैं, पुरुष बनते हैं, वैसे ही गीले कपड़े में मथुरा तक भागते हैं, पीछे मुड़के भी देखते थे नहीं विचार बदल गया तो इसलिए उस जगह पे कहीं राक्षस नहीं आया कोई। ये तो भाई लीला है, उन्होंने अपनी लीला करके व्यवस्था बनाई, लेकिन उसका अंतरंग कारण ये था कि उनको प्रेम से भरी लीलाएं वहां पर करनी थी। तो वहां पर एक स्थान है घेवर बन, और घेवर बन जो है वो राधा रानी का जो मंदिर है वो भानुगढ़ पे, ब्रह्मा जी के चार मुख है, ब्रह्मा जी वहां पर पत्थर बने हैं, मतलब पर्वत बने हुए हैं, तो तपस्या करने के बाद में, हाँ ये ब्रह्मा जी हमारे इतने सबसे प्रथम जीव है, वो सबसे बुद्धिमान सबसे श्रेष्ठ सबसे क्या कहते हैं उसको एक्सपर्ट दक्ष कर्तव्य दक्ष ऐसे श्रेष्ठ जीव है, उसके जैसा कोई तुलनात्मक जीव दुनिया में नहीं, और वो तपस्या कर रहे हैं क्यों, पत्थर बनने के लिए, क्योंकि वो साधारण पत्थर नहीं है, बरसाने पत्थर बनने की तपस्या कर रहे हैं ताकि राधा कृष्ण और गोपियों के रज जो है ब्रजवासियों के रज उनको मिले, सहजता से मिले, बिना प्रयास बिना संकोच दिए हुए उनको तपस्या कर रहे, 60,000 साल तपस्या किया, सत्ययुग की शुरुआत में सफल नहीं रहे, फिर अपने काम पे गए, काम किया सब कुछ, सत्ययुग के एंड में फिर 60,000 साल तपस्या किया, 120,000 साल तपस्या किया, तब जाकर कृष्ण का दर्शन हुआ, तुमने जाओ कृष्ण भाग गतवा और वहां जाकर पत्थर बना, चार शीश के चार पर्वत जो है छोटे से बने वहां पर, और वहां पर एक पर्वत जो है भानुगढ़ है जहां पर राधा रानी का महल है, और वहां से लेके मानगढ़ से आगे तक जो डभारा गांव है वहां की सीमा तक, चिकसोली की सीमा तक एक सुंदर वन है, उसका नाम है घेवर वन, और वो घेवर वन जो है वो राधा रानी अपने हाथों से बनाए, जैसे मायापुर जो है मायापुर की तरह ही है, मायापुर जो भगवान राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया, जब भगवान हमारी ही तरफ आकर्षित रहे और किसी की ओर उनका आकर्षण ना रहे, ये सोच रही थी राधा रानी, मुझे बार बार विरह होता है वो मेरे साथ ही रहे, इसलिए उन्होंने कहा मैं ऐसी जगह बनाऊंगी जो मुझे छोड़कर वहां से कभी नहीं जाएंगे, तो अपने हाथों से पौधे लगाए, हाथों से पेड़ लगाए, हाथों से बेली लगाया, हाथों से फल फूल के झाड़ लगाए, और हौद बनाए, जलाशय बनाए, बहुत सुंदर सुंदर वातावरण, बहुत पक्षियों को बुलाया वहां पर, सब सुंदर वातावरण निर्माण किया उन्होंने, और फिर राधा रानी ने बंसी बजाई स्वयं, और बंसी की तान सुन के कृष्ण भगवान भागवत के आए, वो गुरु है राधा रानी भगवान की, बंसी बजाने की कला में उनके गुरु है, जमुना किनारे बैठकर उनको बंसी बजाना सिखाया, तो वो वैसे फिर भगवान ने वहां पर वरदान दिया है कि हम लोग यहाँ पर आएंगे, भी आएंगे, वो जगह नवद्वीप धाम से प्रकट प्रसिद्ध होगी। उसी तरह से इस पर्वत के बीच में त्रिशोली गांव के अंत तक जो जगह है बहुत सुंदर बनी है और राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है और राधा रानी और कृष्ण भगवान ने उनको सहायता भी किया है, दोनों ने मिल मिलकर उनको जल भी दिया है, सींचा है, खत पानी दिया है और सब कुछ प्रेम से उनका पालन पोषण किया है। और ऐसे भी वर्णन आता है शास्त्र में कि खेल खेल में राधा रानी और कृष्ण भगवान वृक्षों का वेदियों से विवाह भी करते थे, बच्चे लोग कहते हैं गुड्डा गुड्डी का विवाह करते ना, जैसे राधा रानी और कृष्ण भगवान जो है वृक्ष और वेलियों का विवाह करते थे और वो वृक्ष और वेली जो इतने भाग्यवान है जो राधा रानी के सुंदर दिव्य कर्तव्य के द्वारा वहां पर स्थापित हो गए हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि यही वृक्ष वल्ली जो है वो गेवर वन में लगाई है, सब ब्रज में है, वो सभी ब्रज ब्रज में जो वृक्ष है वेली है वो जब गोपियां विरह में व्याकुल हो जाती है तो गोपियों के लिए वो भगवान के चरणों को प्रकट करती है, प्रकाशित करती है उनके लिए, जब उनकी तरह से ओझल हो जाते हैं और उनको ना देखते हुए व्याकुल हो जाते हैं तो उनके लिए वो चरण कमल का दर्शन कराती है, यही है पेड़ और वृक्ष वल्लभी। तो ये गैरवर मन क्या करे कुंड है, इसका नाम है गैरवर कुंड, वो ब्रह्मा जी की नावी मानी गई है, ब्रह्मा जी के चार शीश जो है चार पर्वत है और जो नावी है वो ये गैरवर कुंड माना गया कि उसके किनारे में एक बार राधा रानी खेल खेल रही थी। हम सब बच्चे लोग खेलते ना, तो माता बन जाए, पिता बन जाए, बच्चे बन जाते हैं, फिर रसोई बनते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, सब कुछ करते रहते हैं ना, जैसे राधा रानी वो भरपूर खेल खेल रही थी तो उसमें ब्रज रज के दिव्य ब्रज रज के दिव्य ब्रज रज के व्यंजन थे, दिव्य ब्रज रज के बर्तन थे और दिव्य ब्रज रज का ही रसगुल्ला था और सब कुछ ब्रज रज का ही था, लेकिन बहुत बढ़िया भोजन बन रहा था, बहुत सुंदर। तो वहां पर खीर बनने का प्रयोजन है, खीर बनना अलग होता है, तो वहां से दोबा सब नहीं आ जाती, दोबा सब में जाते हैं तो गोपियां वहां पर राधा रानी को हेल्प कर दे रही हैं खीर बनाने के लिए, खीर खीर में दोबा सब कहते हैं महाराज जी आइए आइए और गरम गरम खीर बन रही है, क्यों नहीं आप भी लेते, कहते अरे मट्टी से खेल रहे हो थोड़ा मेरा अपमान करते हो, मजाक करते हो, मुझे छाप देकर भस्म कर दूंगा। गोपियां वो बस सिंपल सी होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, डर के भाग जाती हैं और राधा रानी के पास जाती है, राधा रानी वो महाराज जी लोग लाल आंखें हो रही है उनकी, डर रही है बहुत बहुत, हमको डर लग रहा है, वो बहुत क्रोधित हो रहे हैं, राधा रानी अपने भाव में मस्त है, उसकी पत्नी है, ये जो भागते हैं उसके पीछे पीछे मुनि भी आ जाते हैं और खबर कीर्ति माई को पहुंचती है, कीर्ति माई वहां पर डर के बाद अरे पता है वर्णन सुनते ना कौन सा टाइप का मुनि यहाँ पर आए हैं, तो समझ जाते हैं कि साफ और देखें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नीचे आती है वो और राधा रानी माता को मिलती है, माता बहुत ही आदर से और प्रेम से और सम्मानजनक बात से उनको रिझाने का प्रयास करती है, तो राधा रानी जब से कहती है उनको महाराज जी इतना क्रोध क्यों करते हो, ये तो खा सकते हो ना, खाने में क्या करते हो, आपको खा तो सकते हो, स्वाद लेने में क्या करते हो, राधारानी का भाषण जो है मधुर भाषण, इतना मधुर है सम्मोहन सम्मोहनात्मक भाषण है, जब वो बोलती है तो बड़े बड़े महामुनियों का क्रोध भी नष्ट हो जाता है, तो ये इनको क्रोध जब गोपियों ने बोला तो क्रोध आया, इन्होंने बोला तो तुरंत हाथ में लिया मट्टी का बर्तन, मट्टी की खीर खाने लगे तुरंत, और उनको दिव्य से दिव्य खीर खाने का आनंद लाभ मिल रहा है, रोमांच खड़े हो गए, कंठ गदगद हो रहा है, आंखों से अश्रु आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हाथ तो मट्टी रहे हैं, आनंद आनंदित होकर वरदान देते राधा रानी जो भी बनाएगी तो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी उसको खाएगा वो सब रोगों से मुक्त हो जाएगा और उसकी कीर्ति जो है त्रिलोक में फैल जाएगी, सब कीर्तिमान बनेगा, सब जगह ये खबर जो है फैल जाती है, नंदीगांव भी पहुंच जाती है, यशोदा मैया जो अपने लाला को सोच रही है इसके लिए ऐसा भोजन मिलना चाहिए, कभी रोग होना नहीं चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, सबसे अधिक आनंद उसको मिलना चाहिए, खबर पहुंचती है कि राधा रानी को ऐसा बता दुर्वासा मुनि ने दे दिया है, तो सोचते रहते कैसे मिला के उनको प्रस्ताव रखो उनके सामने की कन्या के हाथ से भोजन बना हुआ मेरे लाला को मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा, सोच रही है, विचार कर रही है, मन चिंता कर रही है, फिर एक बड़ा समारोह होता है, भगत कथा करती है, लेकिन समारोह के अंदर फिर उनको निमता होता है, निमंत्रण से पूछना है कि हमको उनको दिल्ली ले जाना है, बोले मना नहीं कि मैं जगह हूँ। तो फिर अच्छा वातावरण देखकर तो मगन हो गए थे बात करने करने, तो फिर तृप्ति मैया को लेकर बाजू में आती हैं और यशोदा मैया उनसे पूछती हैं कि तो आप भेजेंगे अच्छा विमान, तुरंत खुश हो जाती
जो बात हुई है राधा रानी, हाँ भी करके ऐसा हुआ था और हमने ऐसा हाथ दिया था, तो उसके
लक्ष में वहां पर एक भंडार खोलते हैं मोतियों का और बैलगाड़ी भर के वहां पर भेज देते हैं तोहफा गिफ्ट। और जब नंदगांव से बड़ा बैलगाड़ी भर के वो तोहफा आता है तो सीधा मां माता को क्रोध नहीं किया और विरोध मतलब संकट नहीं हमारे लिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया हमारा जो गलती से भावना से जो भी मनता से हमने किया को उन्होंने स्वीकार कर लिया इस भावना को, तो हमें भी कुछ संकट में लेना चाहिए। सोच रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया मोती भेजे हैं, क्या करना चाहिए अभी। तो नंदलाल जो है एक मोती उनमें से मांगते हैं तो वो बना कर देते हैं कि आप तो क्या जानते हैं, आप लोग जैसे धान डालते हो ना धान, तो वैसे मैं भी डालूंगा और खेती करूंगा। बोलते हमारे पास इतने सुंदर मोती नहीं है, वो चिंतित थे आपकी चिंता में दूर कर कोई प्रॉब्लम नहीं, मना कर देते हैं। फिर भी वो एक मोती खड़ा ले लेते हैं और उसको जमीन में जाकर गड्ढा खोलते हैं, डाल देते हैं उसको, मुझे जाते हैं उसे जल भी देते हैं। अगले दिन माता को पिता को बुला के लेके जाते हैं, कहते हैं देखो अच्छा पौधा आया है। माता पिता सोचते हैं भाला दिया इसको क्या पता है, हमने तो कई सारे बीज यहाँ वहाँ डाले हुए हैं उसमें जो खेती होती रहती है उसमें से पौधा आया हुआ। अगले दिन जाकर देखते तो पूरा खेत भरा हुआ है मोतियों से और एक 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 पौधे को कई कई मोती लगे हुए हैं, एक मोती से उन्होंने पूरा मेहनत कर लेते हैं। तो बात उस समय में हंसते नहीं और सोचते नहीं है, तुरंत मोती बिल लेते हैं और वो सब मोती बैलगाड़ी में डालकर उनको दोबारा गिफ्ट भेजते हैं और इस तरह से गिफ्ट पहुंचती है। यहाँ पर कितनी मैं सोच रही पता नहीं यशोदा दीदी इस गिफ्ट को स्वीकार करेंगी या हमारी भावना को हाँ बोलेंगी कि भी मना कर देंगी पता नहीं, ऐसा चिंता में है। उनकी तरफ से बैलगाड़ी मोती मोती आते हैं बेबी खुश हो जाते हैं। राधा रानी और मोती की जगह पर रत्न की जीत करती है, वहां पर रत्न को डरना हुआ है डबरा गाँव में ऐसा सुंदर तो लीला है वहां पर। तो इसके बाद भी फिर सभी लोग जाते हैं पूर्णमासी के पास, अभी सब वातावरण अच्छा है, इनका भी राशि है होली राशि है बेटी राशि है तो विवाह होना चाहिए। पूर्णमासी सोचते हैं कि नहीं अभी अगर इस वक्त उनका विवाह कर दिया गया तो फिर सभी जो ब्रज का आनंद है बरसा नंदगांव वहां छुप छुप के मिलना कोयल बन के मिलना है गले गली शादी करना है नंदगांव में गले गली इशारा करना है यहाँ मिलना है माशी को जाके बुलाना है सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारा जो भाव है ब्रज का वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो मना कर देते हैं कहते कि अभी नक्षत्र जो है वो सही जगह पर नहीं, तारे सितारे सही जगह पर नहीं, अभी विवाह करेंगे तो गजब हो जाएगा वो डाल देती है। तो उसके बाद गोपियां जो है कात्यायनी व्रत कर दी दुखी होकर के अभी हमारा मौका गया अच्छा है। कात्यायनी के व्रत के एंड में सब राधा रानी और सब सखिया मिलकर कात्यायनी व्रत कर दिए 30 दिन तक मार्गशीर्ष महीने में, अभी महीना समाप्त होने को आएगा अभी महीने बाद 5 दिन में गति में समाप्त हो जाएगा मार्गशीर्ष मासाणाम मार्गशीर्ष भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मैं स्वयं हूँ। वो गोपियां गांधी थी और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करती है, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर भगवान पहले वस्त्रहरण करते हैं गोपियों का और फिर उनसे राजनृत्य करते और फिर तभी ब्रह्म समूह लीला का आयोजन करते हैं भगवान ब्रह्मा जी बाल बाल को छीन लेते हैं वज्रों को छीन लेते हैं तो सब लाल बाल और सब वज्रे स्वयं कृष्ण बन जाते हैं उसके स्वयं वो सब उनका धारण कर लेते हैं और वो घर पे चले जाते हैं एक साल और उनका सबके घर में भगवान वज्रे की तरह भी गाय बन जी रहे हैं और बालक बनकर भी वो बाल बालों में घर पे निवास कर रहे हैं। सबके घर में कृष्ण है, सब वज्रे कृष्ण है, सब गोपाल कृष्ण है, सब जगह कृष्ण है, सब लोगों को आनंद देते हैं, गायों को आनंद देते हैं गोपियों को आनंद देते हैं उनके श्रद्धा को उत्पाद करते हैं गाय के धन से दूध पीते हैं सबको बालक बनने का आनंद देते हैं। तभी भगवान कहते हैं कि अभी बहुत अच्छा मौसम अभी सभी गोपियों का सभी अधूरों गोपियों से विवाह कर देना चाहिए। तो उस समय सभी बाल बालों का सब गोपियों से विवाह होता है, मतलब क्या होता है कृष्ण भगवान से सब का विवाह होता है। कथा तो अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंत समय लेकिन अनंत नहीं है और भौतिक दुनिया में समय जो है वो अपना अस्तित्व दिखाता है तो सबको बुरा बना देता है वो थका देता है हमारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो भी आगे आगे बढ़ता है और समय भी चला जाए सफेद बार काली काली बार सफेद हो जाते हैं और हम भी जवान और चुस्ती वाले लोग थक जाते हैं बुरे हो जाते हैं। जैसे कथा का भी समय होता है शुरुआत होता है उसके अंत होती है लेकिन कथा समाप्त होने के पश्चात भी हरि का स्मरण हरि का चिंतन हरि कथा का आस्वादन होते रहना। करना है उसको तो कोई रोक सकता नहीं ना, समय रुकेगा कथा खत्म हो जाएगी। तो आप सब लोगों को जो भी उन्होंने आपने सुना है, पढ़ा है, श्रवण किया है, उसका चिंतन करते हुए रहना चाहिए। जैसे गोपियां यशोदा मैया दिन भर क्या करती, वही जीवन का सफलता है। दिन भर कृष्ण के विचार में मन रहना, मन के विचारों की स्थिति जहां पर उत्कट स्थिति विचारों की होती है वहां पर कृष्ण को बिठा लेना, और वही उत्कट विचार देकर कृष्ण के बारे में बीच बीच में हमारा मन माया के चक्कर में भाग जाता है, उसको माया को हटाकर वही कृष्ण को बिठा देना और उनके बारे में सोचना, उनकी गुलाम के बारे में सोचना, ये सब गोपियां करती। यही सब बोलो वृंदावन में होते रहता है। दिन भर भगवान लीलाओं का गुणगान करते हैं, गीत गाते रहते हैं, शायद कथा समाप्त हो जाएगी, आप लोगों को बंधन नहीं है। समय के तरफ से हम सीमित हैं, समय की सीमा से हम क्या कहते हैं उसको बद्ध है, लेकिन आत्मा मुक्त है। आत्मा को अगर विचार करना है कृष्ण के बारे में तो कोई समय का पाबंदी उस पर नहीं है। दिन में रात में सोते उठते जाते उठते बैठते आप भगवान का ध्यान कर सकते, इसी ने जीवन दिया है। कुत्ता बिल्ली के जीवन में ये सब नहीं कर सकते हम, कीटर पकौड़े के जीवन में, पक्षी के जीवन, मछली के जीवन में हम ऐसा ध्यान भगवान का नहीं कर सकते। सत्य कृपा हो गई तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अपने आप में ये निचली योगी में हम लोग भगवान के विचार नहीं कर सकते। यही एक कीमती यंत्र है, इस यंत्र में ये सुविधा दी है कि समय के बंधन में बद्ध होने पर भी समय से मुक्त होने की जो कला है ये यंत्र में हमको उपलब्ध है भगवान की कृपा से, विचारों की कृपा से विचार कर सकते हैं। तो वही मती जब कृष्ण कृष्ण मती हो जाती है तो जीवन धन्य है। कृष्ण की मति होगी तो सब कुछ पवित्र है, सब कुछ शुभ है, सब कुछ श्रेष्ठ है। हम सब आपको ये विनती करते हैं कि इतना कीमती मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो मुझे की तरफ क्यों जीना है, जीवित होकर जीना है, कृष्ण के लिए जागरूक होकर जीना है। तो इस जीवन को अर्थ है, इस जीवन को कुछ अधिक अर्थ है उसके अंदर, तो क्या करना सबका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मत समझना कि केवल संतों के लिए एक सुविधा है। हाँ संत लोग बने कैसे हैं, हम में से रात में से तो संत बने ना, एक व्यक्ति कोई व्यक्ति को बनते हैं तो आम जनता संत बनता है। तो सभी लोगों को संत बनने की सुविधा जो है इस भौतिक दुनिया में मनुष्य जीवन में भगवान ने दी है, उसको प्राप्त करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। बाकी कुछ कला आपको आती नहीं आती हो, तो शास्त्र का ज्ञान नहीं भी हो, भगवान का नाम का गुणगान तो सब लोग कर सकते हैं। कहते हैं कुत्ता भी कर सकता है। हमारे खाड़ के प्रोग्राम में एक कुत्ता हर फ्राइडे को आके कथा सुनने को बैठता था, प्रसाद खाते जाता था हर फ्राइडे। संत की कृपा होती तो वो भी हो जाता है, लेकिन अपने आप में स्वतः में कुछ करना है तो मनुष्य जीवन को ऐसे मनुष्य जीवन में हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेकर हम अपने आप को भगवान के धाम में पा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।